ओम शांति। रात के लिए हमने एक टॉपिक सोचा था दोपहर में, और उसका नाम था फूड फॉर मूड। फूड फॉर मूड, फूड अर्थात आहार। आहार किसे कहेंगे? सबसे पहले तो ये चर्चा आवश्यक है। आहार केवल वो नहीं है जो हम मुंह से लेते हैं। आहार की बहुत व्यापक परिभाषा है। आहार अर्थात जो कुछ भी इस शरीर में लिया जा रहा है वो सब कुछ आहार है। और एक अर्थ में देखें तो 24 ही घंटे हम कुछ ना कुछ खा रहे हैं। वो सब कुछ जो आंखों से लिया जा रहा है, वो सब कुछ मुंह से लिया जा रहा है, वो सब कुछ जो कानों से लिया जा रहा है, नाक से लिया जा रहा है, त्वचा से लिया जा रहा है, वो सब कुछ क्या है? आहार है। तीन प्रकार के आहार बताए हैं, एक सात्विक, एक राजसिक और तीसरा तामसिक। तामसिक आहार वो आहार है जो खाने से निद्रा, आलस और प्रमाद आता है, सुस्ती पड़ती है। राजसिक आहार वो आहार है जो खाने के बाद उत्तेजना, आवेश और जोश आता है, एक्साइटमेंट होती है। और सात्विक आहार वो आहार है जिससे क्या होता है?
बल
मिलता है, मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। मन में और देह में जो उत्तेजनाएं हैं वो कम हो जाती है, तो उसे कहा जाता है सात्विक आहार। तो हमने कहा कि हर समय हम कुछ ना कुछ आहार ले रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे शरीर में जा रहा है। अगर जो जा रहा है वो तामसिक है तो तामसिक वृत्तियां जागृत होगी। यदि वो राजसिक है तो राजस का जो प्रभाव है वो मन में और शरीर में होगा। अगर जो जा रहा है, केवल मुख की बात नहीं कर रहे, पांचों ही इंद्रियों से, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, पांच है। एक है रूप, एक है रस, एक है स्पर्श, एक है शब्द, एक है गंध, एक है आंख, एक है नाक, एक है मुख, एक है कान और पांचवा है त्वचा। पांच इंद्रिया ज्ञानेंद्रिया कहा जाता है। पांच ज्ञानेंद्रिया रंग रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, रूप रस गंध और स्पर्श शब्द द्वारा जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हमारे मन पर असर है। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या सूंघ रहे हैं और हम किसे स्पर्श कर रहे हैं, ये पांचों ही चीजों का मन पर बहुत गहरा असर है। उदाहरण के लिए भारत में बहुत बड़े एक गायक और संगीतज्ञ थे जिनका नाम था पंडित ओमकारनाथ। तो ये जो गायक थे पंडित ओमकारनाथ, एक बार इटली गए बहुत समय पहले, और इटली में वहां के जो तानाशाह थे मुसोलिनी, उनके साथ उनकी भेंट थी और दोनों को रात में एक साथ डिनर करना था। तो जब मुसोलिनी बैठे और पंडित ओमकारनाथ जो भारत से गए थे, जो कि बहुत प्रसिद्ध संगीतज्ञ और बहुत प्रसिद्ध गायक थे, तो मुसोलिनी ने पूछा कि मैंने सुना है कि भारत में जब श्री कृष्ण थे और वो जब बंसी मुरली बजाते थे तो गोपियां जो होती थी वो पूरा उनको देहभान या पूरा उसमें लीन हो जाती थी, मोर पंछी पक्षी सारे गाने लगते थे जब वो गाते थे, तो मुरली बजाते थे। तो क्या ये सही है क्या? उसको पूछा पंडित ओमकारनाथ को। तो पंडित ओमकारनाथ ने कहा कि लिखा तो ऐसा ही है और हमने भी ऐसा ही सुना है। हम एक काम करते हैं, मैं यहां कुछ गाता हूं या कुछ बजाता हूं, देखते हैं उसका क्या असर होता है। तो उस डाइनिंग हॉल में कोई भी और चीज नहीं होती है, वो चाइना की प्लेट होती है, स्पून होते हैं, चम्मच होता है, कटोरिया होती है। तो वो दो एक हाथ में दो चम्मच ले लेता है और वो कहता है मैं इसे बजा के देखता हूं क्या होता है। तो वो उसको बजाने लगता है, बजाने लगता है, बजाने लगता है। वो संगीत का ताल और उसका जो सुर और उसकी जो आवाज, जो साज, ऐसा वो बजाने लगता है कि सामने बैठा वो मुसलोनी जो है, उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं जब वो संगीत सुन रहा था, जब मैं वो गीत सुन रहा था, मैं पूरा खो गया, पता ही नहीं चला, सिर डोलने लगा, हाथ इधर उधर जाने लगे, इतनी जोर से क्या असर होने लगा उस संगीत का, मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं आया, मैं एक दो बार तो नीचे सिर हो गया मेरा, चोट भी लग गई, ऐसा भयंकर उसके ऊपर प्रभाव हुआ उस संगीत का, उस गीत का, उस सुर का। और जो कुछ उन्होंने बजाया, किससे बजाया, केवल उस चम्मच से और जो भी वहां पे थे डाइनिंग में टेबल पर जितनी भी चीजें थी, वो उतनी ही चीजें बजाई और वो भाव विभोर हो गए। तो मुसलोनी ने अपने जीवन कहानी में लिखा है कि पंडित ओमकार नाथ ने कहा, यदि मेरे बजाने से ये प्रभाव हो सकता है, इफ दिस इज पॉसिबल, तो शायद श्री कृष्ण ने भी जब मुरली बजाई होगी तब जो पंछी नाचे थे, मोर ने जो गीत गाया था, या गोपियों का जो हाल हुआ था, शायद वो भी उतना ही सत्य होगा। तो ये बात हमने बताई संगीत की। संगीत भी एक अन्न है, एक फूड है। उस संगीत का भी मनुष्य के चित्त पर, ना केवल मनुष्य के, पशु पक्षी, ना केवल पशु पक्षी, प्रकृति, प्रकृति भर पर भी उसका असर है। केवल चेतन पर नहीं दिखाया गया है। तो संगीत इतना श्रेष्ठ चीज बताई है कि उसका असर जड़ तत्वों पर भी है, तो वो भी एक आहार है जो हम कानों से ले रहे हैं। तो आज हम उन बातों की चर्चा करेंगे कि जब किसी भी कारण से इस जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते जब हमारा मूड डाउन हो जाए, उदासी आ जाए, दुखी हो जाए, तो कौन सा अन्न स्वीकार किया जाए, कानों से, मुख से, आंख से, नाक से और स्पर्श से? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि जीवन में विघ्न ना आए, परिस्थितियां ना आए, समस्याएं ना आए, माया ना आए। माया सिर पर लेबर लगाकर नहीं आती है, वो किसी व्यक्ति के द्वारा आती है और वो व्यक्ति बहुत दूर का नहीं होता है, हमारे ही आसपास का होता है। तो वो माया का रूप धारण करता है और उसी के द्वारा परीक्षाएं होती है। और ब्राह्मणों के हिसाब किताब किससे चुकते होंगे? ब्राह्मणों के द्वारा। यदि ब्राह्मण परिवार एक एग्जामिनेशन हॉल है, एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। क्या है? एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। माया उसके द्वारा आएगी, पेपर उस व्यक्ति के द्वारा आएगा। और सारे इस एग्जामिनेशन हॉल में जितनी ब्राह्मण आत्मा है उतने पेपर, जितनों को हम जानते हैं और जितनों को हम नहीं भी जानते, वो सब पेपर का रूप धारण कर सकते हैं। वो किस लिए कर रहे धारण? हमें पक्का बनाने के लिए। तो उनका विरोध करना चाहिए या उन्हें धन्यवाद देना चाहिए? किस बात के लिए धन्यवाद? किस लिए? चुप्त हो रहा है पर इतना आसान है? जो बार बार विघ्न डाले, जो बार बार हमारी टांग खींचे, जो बार बार अपशब्द बोले, बार बार निंदा करे और बार बार ग्लानी करे और षड्यंत्र करे, तो क्या करें? इस ब्राह्मण जीवन में एक रसस्थिति हो जाए, ये लक्ष्य है। और कब होनी चाहिए एक रसस्थिति? जब हम सबके बीच में है, तब। ऐसा नहीं कि छोड़ के जाए सबसे और फिर एकरस हो जाए, वो सबसे आसान मार्ग है। सबसे दूर हो जाओ और हट जाओ और एकरस हो जाओ। परंतु एकरस कब होना है? सबके बीच में रहते, सारे विघ्नों का सामना करते, सारी परिस्थितियों के बीच रहते हमारी स्थिति, हमारे मन की स्थिति एकरस रहे। अगर मन की ऐसी स्वस्थ स्थिति हमको रहना करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा ही आहार लेना पड़ेगा। तो जब मन उदास हो जाए, दुखी हो जाए, बेचैन हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, कुछ करने की दिल ना हो, तब क्या किया जाए? तो हम एक एक करके पांच प्रकार के भोजन, जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रिय है, उनके द्वारा क्या क्या करना है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है आंख। जब उदास हो जाओ या मूड डाउन हो जाए तो इस आंख से कौन सा भोजन करना है, कौन सा भोजन उस समय लिया जाए जिससे कि स्थिति फिर से अचल हो जाए, अडोल हो जाए? कौन सा भोजन लिया जाए आंखों के द्वारा, अर्थात क्या देखना है जब मन डाउन हो जाए, तब क्या देखेंगे? नई दुनिया के नजारे देखना है, एक तो ये, और वो भी अच्छा है, उससे भी थोड़ा पहले कुछ दूसरा, पहले स्थूल फिर सूक्ष्म की तरफ आएंगे। स्थूल में क्या क्या देखना है? बाबा भी थोड़ा सूक्ष्म है। हाँ, पहले का अनुभव, एक है स्थूल आंखों से देखना, एक है सूक्ष्म आंख से देखना, मन की आंख से देखना। यदि मधुबन में है तो मधुबन को ही देखना साक्षी होकर, या फिर मधुबन से दूर है तो बाबा मिलन को देखना। क्या देखना? बाबा मिलन को देखना। क्या देखेंगे बाबा मिलन में? डायमंड हॉल को देखना, जिसमें इतनी बड़ी सभा है, सारे ब्राह्मण आत्माएं वहां बैठे हैं, भगवान सामने खड़ा है, सामने बैठा है और क्या कर रहा है? सबको दृष्टि दे रहा है। उस दृश्य को सामने इमर्ज करना जब थोड़ा सा डाउन हो जाओ, तो ये सबसे पहला काम है, मधुबन के उस दृश्य को आंखों के सामने लाना जिसमें स्वयं भगवान बैठा है और बोल रहा है, जिसमें स्वयं भगवान बैठा है और दृष्टि दे रहा है, जिसमें स्वयं भगवान बैठा है और टोली दे रहा है। उन सभी क्षणों को याद करना, यदि स्वयं हमने भगवान से कभी टोली ली हो उस मोमेंट को याद करना, यदि कभी हमने दृष्टि ली हो चाहे नजदीक से या दूर से, उस क्षण को याद करना। और सबसे महत्वपूर्ण, उस सबसे पहले मिलन को याद करना, जब सबसे पहले इस ब्राह्मण जीवन में हमने बाबा को देखा, हम मधुबन आए थे और भगवान से हमने मिलन मनाया था। क्या करना है? उस दृश्य को याद करना है, इमर्ज करना है, उसको देखना है कि पूरा डायमंड हॉल है, पूरा भरे हुए है और मैं बीच में हूं और बाबा मुझे देख रहा है, पूरी मुरली चल रही है, वो दृष्टि, वो बोल, दादियां मिल रही है, वो गुलदस्ते, वो टोली, भगवान भोग स्वीकार कर रहा है। इस दृश्य को देखना कैसे देखेंगे? मन की आंखों से देखेंगे। या फिर अगर वो वीडियो हमारे पास है तो उसको वैसे के वैसे देखना। एक तो परंतु मन की आंखों से देखना हमेशा शक्तिशाली है स्थूल आंखों से देखने से। माइंड साय 20 गुना अधिक शक्तिशाली बताया है। एक होता है आंखों से देखना, एक होता है मन की आंख से देखना वही दृश्य। तो ये हुआ सबसे पहली पॉइंट आंखों की। आंखों में पांच पॉइंट, हर एक में पांच पांच लेंगे, पांच में पांच पांच। तो सबसे पहले आंखों में पहली पॉइंट मन की आंखों से मधुबन को देखना। दूसरी पॉइंट मन की आंखों से बाबा को देखना। कहां देखना? सूक्ष्म वतन में या तो परमधाम में। ये थोड़ा सूक्ष्म अभ्यास है। ये कब करना है? जब उदास हो जाओ थोड़ा, तब। मन की आंखों से किसको देखना है? सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा खड़े हैं, परम धाम में शिव बाबा है, महाज्योति चमक रही है, चहुओर प्रकाश फैल रहा है। उस दृश्य को अपने आंखों के सामने लाना है। तो दूसरा देखना है बाबा को। तीसरा देखना है इस जीवन में सेवा के उन सुखद क्षणों को। कौन सा दृश्य इमर्ज करना है? जब हमने कभी बहुत अच्छी सेवा की होगी और हमको बहुत खुशी मिली। कौन सी सेवा? जैसे कि उदाहरण के तौर पर स्थूल सेवा और मनसा सेवा तो है, और दूसरी थोड़ी दूसरी वाणी की सेवा या स्थूल सेवा। जैसे कि हमने किसी का कोर्स कराया है, हमने प्रदर्शनी समझाई है, हमने कोई मेले की सेवा की है, हमने स्थूल सेवा केंद्र में कोई सेवा की है। वो सारे दृश्य जो है बचपन के, कौन से बचपन के? ईश्वरीय बचपन के, रूहानी बचपन के, ब्राह्मण जीवन में जब हम छोटे थे तब, उन सारे दृश्य को आंखों के सामने लाना है, देखना है उन क्षणों को। और जैसी स्मृति होती है वैसा ही स्वरूप बनता है। जैसे यहां हम बैठे हैं, ठीक है, मधुबन में कोई माता है, रोटियां बेल रही है, और रोटियां बेलते बेलते उसे अपने बेटे की याद आ गई बहुत तीव्रता से, तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्यों? स्मृति और स्वरूप तुरंत हो जाता है। उसी तरह यदि निगेटिव भी लिया जा सकता है, यदि 10 साल पहले किसी ने हमसे अपमान किया है, हमारा कुछ कठोर बोला है हमसे, यदि हम यहां योग में बैठ के उन क्षणों को याद करें, तो वैसे की वैसी सिचुएशन फिर से क्रिएट हो जाएगी माइंड में, उसी स्थिति में हम स्थित हो जाएंगे। या फिर हम कभी बीमार थे और हम कभी भर्ती थे और बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, सोचो अब वापस वही सारी स्मृति याद आओ कि मैं बीमार हूं, मैं बेड पर लेटा हुआ हूं और मुझे बहुत सारे सुई लग रही है। लक्ष्मण भाई यहां से सुई लगा रहे हैं, वहां से लगा रहे, यहां से आउट तो फिर इधर लगा रहे, और फिर कुछ 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 कुछ, और वो पूरा एकदम डिटेल में देखो जैसा था। तो जो स्थिति तब थी वैसी स्थिति क्या हो जाएगी? अब निर्माण हो जाएगी। अभी सब ठीक था थोड़ी देर पहले, अभी लगेगा थोड़ा बीमार जैसा लग रहा है। तब बुखार की वजह से भर्ती हुए थे 10 साल पहले, अभी लगेगा कि वापस थोड़ा बुखार तो नहीं है। क्यों हुआ ये? केवल सोचने से, केवल इमेजिन किया, केवल विजुलाइज किया, केवल वो जो बात 10 साल पहले थी उसको लाया। उसी तरह जो पहली पॉइंट बताई कि बाबा मधुबन में मिल रहे और हम मिल रहे, तो वो जो हमारी मेमोरी है वो फिर से आ जाएगी। एक बाबा को हम सूक्ष्म वतन में कभी किसी दिन बहुत गहरा अनुभव हुआ होगा, उस केवल अनुभव को हम याद कर रहे हैं, तो फिर से वही अनुभव होगा। तीसरा सेवा के वो क्षण जिसमें हमको बहुत खुशी हुई, तब फिर से हम जो खोया हुआ मूड है, अभी अभी जो नीचे गिरा है वो फिर से ऊपर आ जाएगा। चौथा चौथा और किसको किसको देखेंगे, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, सब बताएंगे, क्या देखेंगे कि जिससे वो देखते ही एकदम से फिर से मूड ठीक हो जाए। क्या देखेंगे? हाँ, दादियों के साथ। हम दादियों जो भी, अब सब तो नहीं थे पर जो थे वो देख सकते हैं, उनके लिए कुछ और सोचते हैं। तो जो थे जिन्होंने दादियों से पालना ली, दादियां हमारे घर पर आई, उस मोमेंट को याद करना। दादियों ने हमको टोली खिलाई, दादियों ने हमारे साथ कुछ बातें की, दादियों के साथ हम कहीं गए, कहीं ट्रैवल किया, वो सारे मोमेंट्स को याद करना बैठ के। एक दिन बस यही योग, केवल याद, क्या क्या था, तो फिर से मूड, मूड की मरम्मत रिपेयर हो जाएगा। एक तो दादिया, अगला पांचवा प्रकृति, प्रकृति का सौंदर्य। प्रकृति हमें बहुत कुछ कहती है, प्रकृति हमें बहुत कुछ दिखाती है। जैसे ही प्रकृति के सानिध्य में जाएंगे, जहां पे झरना है, झील है, पर्वत है, बादल, आकाश, बारिश, ये सारी प्रकृति में कुछ ना कुछ सौंदर्य है। जब डाउन हो जाओ तो क्या करना है, जाकर निसर्ग के सानिध्य में जाकर बैठ जाना, छत पर चले जाना, वॉक पर चले जाना, लॉन्ग वॉक, जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, जाते जाते मूड ठीक हो जाएगा। जब तक लौट आएंगे, बजाय इसके कि कमरे में ही बैठना और इसको उसको फोन और इसको उसको एसएमएस कि मूड ठीक नहीं है, ये करने या किसी से झगड़ा, क्या करना है, निकल जाना प्रकृति की गोद में, प्रकृति के सानिध्य में, प्रॉक्सिमिटी ऑफ नेचर। उस नेचर में जाते ही बहुत सारी चीजें जो हलचल वाली है वो शांत हो जाएगी। तो ये पांच चीजें करनी है। ये तो हो गया आंखों का हार, आंखों से इन चीजों को हमने देखा। और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और क्या देखेंगे आप बताओ, क्या देखेंगे मन की आंख से कि जो दृश्य देखते ही खुशी हो जाए? कौन सा परिवार? हाँ, ब्राह्मण परिवार को देखना। ब्राह्मण परिवार के बीच में हम हैं। ओम शांति भवन के दृश्य को देखना, जहां बैठकर मुरलियां सुन रहे हैं। इतना बड़ा अलौकिक परिवार। वो एक परिवार था छोटा सा जहां पहले थे, बस उतना ही था छोटा, उससे बड़ा वो परिवार नहीं था। पर अभी जो परिवार है वो इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा अलौकिक परिवार है। उस छोटे परिवार से बड़े परिवार में आ गए और उस परिवार में खुशियां, ये देखना। जो लोग सेंटर पर रहते हैं और सेंटर पर जाते हैं, जो मधुबन में नहीं रहते, वो क्या देखे, सुबह के उस दृश्य को देखे, गुरुवार का वो दिन, भोग लग रहा है और पूरा सेंटर भरा हुआ है, सारे ब्राह्मण परिवार वहां इकट्ठा हुआ है, या सेवा का कोई क्षण, सेवा का कोई अलग क्षण जिसमें हम, बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम है, मेगा प्रोग्राम जिसमें हम बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, यहां कर रहे, वो कर रहे, भाग दौड़ कर रहे, सब कर रहे, उसको याद करना। या फिर उस पल को याद करो कि जिस समय हमने बहुत अच्छा खुद भोजन बनाया था और सबको खिलाया था, ब्रह्मा भोजन, और वो खाकर सभी तारीफ की, केवल तारीफ नहीं, बहुत खुश हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे। उस क्षण को याद करना, उस क्षण को याद करना जब हम सेवा के लिए कहीं बाहर गए थे, बाहर वालों के सामने, और वहां कुछ सेवा करके आए, उस पल को याद करना। और केवल याद नहीं, हम बात कर रहे हैं आंखों से देखने की, आंखों से देखने की। और जिन्होंने दादियों की पालना ली उनके लिए है, दादियां जब स्टेज पे रहती है कितना अलौकिक और सुंदर दृश्य है, केवल उनको देखना, संपूर्ण जीवन जिन्होंने अर्पण कर दिया। पुराने फोटो याद करो दादियों के और नए फोटो अभी के, बाल सफेद हो गए, सारा एक एक हड्डियां दे दी, कैसा त्यागमयी और कैसा तपस्वी जीवन है। केवल उनको देखना और अपने अंदर खुशी भरना। अगर वो भी नहीं है तो फोटो तो है, फोटो तो देख सकते हैं। सूक्ष्म बुद्धि भी है, दिव्य बुद्धि भी है। कल की मुरली संडे की अव्यक्तवाणी, बाबा ने कहा तुम्हें यंत्र मिला है दिव्य बुद्धि का, इस बुद्धि से तुम देख भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, अपना क्या पद होगा उस दरबार में वो डिसाइड कर सकते हो अभी, ऐसी ये यंत्र तुमको मिल गया है। तो दिव्य बुद्धि से, मन की आंखों से, सूक्ष्म नेत्र से इन सारे दृश्य को देखना है। कब देखेंगे? जब वैसे भी देख सकते हैं, परंतु जब थोड़ा सा डाउन हो जाए। एक अभी दूसरा पॉइंट है सुनना, आंखों कानों का आहार। क्या सुनेंगे, क्या सुनेंगे? मुरली सुनेंगे एक तो, वो तो रोज सुनते ही है, और गीत सुनेंगे। कौन से गीत? बाबा के। कौन से? बहुत, जिसमें बहुत ऐसा कोई तो एक गीत रहता है हर एक के जीवन में, जिसने वो गीत ज्ञान में आते ही सबसे पहली बार सुना था और सुनते ही वो एकदम जैसे अशरीरी हो गया था। वो एक गीत कोई ना कोई होगा, फर्स्ट गीत, कुछ भी हो सकता है, भगवान हमारा साथी है से लेके कोई भी गीत, कि वो गीत पहली बार सुना और आंखों से आंसू आ गए, ऐसा उसमें प्यार था, ईश्वरीय प्रेम। फिर से उसी गीत को सुनना, ऐसे गीत बचा के रखने हैं अलग से, रोज रोज नहीं सुनना उनको, कॉमन हो जाएंगे तो, उनको कभी कभी केवल, रोज रोज वाले अलग। ये जो गीत है बहुत कीमती है, इनकी कीमत करोड़ों में है, क्योंकि उस गीत की उस एक लाइन और उस एक शब्द ने वो अनुभव करा दिया था जो पिछले 10 साल में भी नहीं हो रहा है अभी, जो तब हो गया था एक बार। वो गीत कोई एक गीत है, केवल गीत भी हो सकता है, म्यूजिक भी हो सकता है, तो उसको सुनो। जब डाउन हो जाओ तब सामने बैठ जाइए, इधर आराम से बैठ सकेंगे। तो गीत, पावरफुल सॉन्ग्स, मोटिवेशनल सॉन्ग्स, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स, ऐसे सॉन्ग्स, ऐसे गीत जिसमें फिर से ईश्वरीय प्रेम जागृत हो जाए। गहरे गीत, पुराने जो सॉन्ग्स है ना जिसमें बहुत कम म्यूजिक है पर है बहुत पावरफुल, अभी जो गीत है उसमें म्यूजिक ज्यादा है, पर जो पुराने जो यज्ञ के गीत है वो ऐसे गीत है कि एक जो सुनते ही क्या हो जाता है, नशा। इंटॉक्सिकेटिंग सॉन्ग्स, इंस्पायरिंग सॉन्ग्स। जब मूड डाउन हो जाए तो कानों का सबसे पहला आहार है, एक तो मुरली बताई, दूसरा बताया सॉन्ग्स, और तीसरा हर एक के पांच पांच निकालेंगे, तीसरा क्लास। कौन सा क्लास? ऐसा क्लास जो पुरुषार्थ का है, दादियों का या वरिष्ठ भाइयों का, जो महारथी आत्माओं का, उनके द्वारा हमने कभी वो क्लास बहुत पहले सुना था और तब वो क्लास बहुत अच्छा लगा था हमको, और अभी बहुत समय हो गया सुना ही नहीं, पर इतना बताया कि वो जब सुना था तो बहुत शक्ति भर गई थी, उसको ढूंढो कहां गया वो, और फिर से उसको सुना। तो अभी जो मूड डाउन है, अभी जो उदासी, थोड़ा सा मूड ऑफ, थोड़ा सा नाराजगी जीवन से, ब्राह्मणों से, परिवार से, बाबा से तो नहीं होते, ये परिवार बहुत नाराज करता है, बाबा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किससे है? परिवार से। ये ठीक नहीं है, बाबा बहुत अच्छे, ये ठीक नहीं है। तो क्लास तीसरा, चौथा
मुरली में सर, इसी पॉइंट आ जाए।
मुरली बोला पहला, मुरली सुनना
कोई ऐसी पॉइंट
जो आकर्षित करे उसको सुनना फिर से। ओके और क्या सुनेंगे? बाबा की आवाज क्या सुनेंगे? स्वयं भगवान की आवाज। बहुत दिनों के सुनी नहीं होगी, जब बाबा आते तभी सुनते, बाकी कौन सुनता है? बहुत कम सुनते, बहुत कम सुनते। सोचता है उससे ज्यादा मुरली पढ़ ले, वही मुरली। वो आवाज तो धीरे धीरे चलती है, इतना टाइम और पेशेंस कम है ब्राह्मणों के पास। इसके लिए क्या करना है? कभी कभी वो बाहर रखना है, थोड़ा सीडी या जो भी है, या मोबाइल में थोड़ा डाल के रखना है वो आवाज। ऐसा ना हो कि जब जाके अभी मिलेंगे अक्टूबर में तो एकदम ऐसा ना लगे, एकदम परिचय ही नहीं है ये आवाज से। आवाज थोड़ी रोज सुनने में हो फिर लगेगी अपनी है, अपना ही है कोई। नहीं तो 6 महीने के बाद ही सुनते है ब्राह्मण सीधा, बीच में गैप होता है। 6 महीने तक बाबा की आवाज सुनते है क्या कोई? बहुत कम, बहुत कम। तो वो थोड़ा आवाज डाल के रखना, वो मेरा बाबा करके पूरा बाबा का किताब जो है, वो किताब भी है और मेरा बाबा का पूरे जो वाक्य है उसका कंप्लीट ऑडियो भी है। वो कंप्लीट ऑडियो, इतनी बड़ी मोटी किताब है। यहाँ पर इंग्लिश क्लास में चालू है रोज सुबह, हफ्ते में 2 या 3 दिन सुबह, तो उस क्लास का कंप्लीट ऑडियो है बाबा की आवाज में। एक एक मुरली 95 का इतना पैराग्राफ छोटा सा, तो वो बहुत सारे छोटे 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 ऑडियो है। तो वो सारे या तो मोबाइल में या तो टेप में या जहां भी डाल के रखना है, और बीच बीच में थोड़ा सुनना है उनको, तो क्या हो जाएगी? खुशी हो जाएगी। ऐसे अनुभव होगा कि जैसे हम वही बैठे हैं, फिर से डायमंड हॉल में, फिर से वो आप सामने और फिर से वही आवाज। तो आवाज सुनना है चौथा। पांचवा
यज्ञ की हिस्ट्री,
आवाज आवाज क्या सुनना है? यज्ञ की हिस्ट्री सुनना, वो क्लासेस में आ जाएगा। क्लासेस अलग अलग प्रकार की क्लासेस है हमारी,
अनुभव सुनना,
वो अपनी अनुभव सुनना। हाँ ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है, अगर वो रिकॉर्डेड है। हाँ चलो रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड सुनना या तो याद करना, पर हम सुनने की बात कर रहे हैं अभी, तो सुनाई मतलब शब्द बाहर से आने चाहिए।
किसी का सुना
था। हाँ
सुना रहा।
अच्छा तो हाँ, ब्राह्मणों में अलग अलग प्रकार की क्लासेस होती है। एक क्लास होती है अनुभव वाली, जिसमें व्यक्ति खुद अनुभव सुनाता है कि ऐसे ऐसे हुआ और मैं ज्ञान में आया, वट एवर, वो जो एक क्लास अनुभव। दूसरी क्लास होती है किसी टॉपिक पर, जैसे अभी हम ये टॉपिक पर क्लास करा रहे, फूड फॉर मूड ये टॉपिक है, तो एक टॉपिक पर होती है। तीसरे प्रकार की क्लास होती है सेवा समाचार, जैसे कोई कहीं गया तो वो अपना पूरा सेवा समाचार सुनाता है। चौथी क्लास होती है अव्यक्त मुरली पर, जो यहाँ पर संडे होती है, रिविजन, पूरी मुरली का कंप्लीट रिविजन। और एक क्लास होती है अनुभव पर, वो कौन से अनुभव? दादियों के साथ के अनुभव। एक होता है बाबा के साथ का अनुभव, एक है दादियों के साथ का अनुभव। तो इन चारों पांचों में से कोई भी क्लास सुन सकते, वो सब क्लास में आ गया। ठीक है अभी पांचवा पॉइंट रह गया, और क्या सुनेंगे? प्रकृति की आवाज। जैसे आंखों का आहार बताया प्रकृति के सौंदर्य को देखना, तो मूड जो डाउन है वो ऊपर हो जाएगा। उसी तरह प्रकृति की आवाज सुनना। सृष्टि में दो प्रकार की आवाज है, एक तो आवाज वो है जो फ्रिक्शन से होती है, दो चीजों का घर्षण होता है, टच होता है तो आवाज, इस आवाज को कहा जाता है आहत नाद। एक दूसरी आवाज भी है यहां पर जो किसी घर्षण से नहीं है, उसे कहा जाता है अनहद नाद। उस आवाज को सुनने का प्रयत्न, और वो उसकी विधि है प्रकृति में जो भी आवाजें हैं उनको सुनना, प्रकृति के सानिध्य में जाना, पंछियों की आवाज, झरनों की आवाज, बादलों की आवाज, बारिश की आवाज, समुद्र की आवाज, लहरों की आवाज, पेड़, हवाएं, सब कुछ। उसमें जितने संसार में महान कवि योगी, वो योगी लोग कहाँ रहते थे? शहर में थोड़ी रहते थे, बाहर रहते थे, जंगलों में, प्रकृति के पास रहते थे। क्यों? बहुत सारे कारण है उसके, प्रकृति के सानिध्य में जाते ही व्यक्ति अशरीरी होना बहुत सहज हो जाता है। माउंट अबू जो अगर देखो तो कितना कम पोल्यूशन है इधर, बस उतना वो मार्केट है बस, बाकी इधर कोई आवाज नहीं है प्रकृति की आवाजें छोड़कर। इसके लिए योगियों का स्थान बाबा ने इसलिए इसको चुना। तो ये हो गए पांच सुनना। फिर है स्पर्श करना, रूप रस स्पर्श शब्द गंध, पांच चीजें। पांच में हम आ गए अभी स्पर्श। जब मूड डाउन हो जाए तो कौन सी चीजों को हाथ लगाए, अब वो बताओ।
फूल
को, अच्छा स्थूल से चालू करते हैं, फूल को, ठीक है। और क्या हो सकता है सोचो जो, उसको हाथ लगाए तो मूड ठीक हो जाएगा, थोड़ा रूहानी और अलौकिक चीज बताओ कुछ। हाँ वो थोड़ा सूक्ष्म है, पहले स्थूल उसमें भी आएंगे। सबसे पहले तो यदि हमें कोई मधुबन से सौगात मिली है, क्योंकि वस्तुओं के साथ में मेमोरीज होती है, यदि दादी ने हमें कोई सौगात दी है, यदि मधुबन से हमें कोई सौगात मिली है, यदि सेंटर से हमें कोई सौगात मिली है, उन चीजों को निकालो बाहर, याद करो और उनको हाथ लगाओ, तो वो हाथ लगाते समय वो क्षण भी याद आ जाएगा जिस समय वो दी गई थी। वो छोटी सी चीज हो सकती है, शॉल हो सकती है, बैग हो सकती है, पर्स हो सकती है, कुछ फोटो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सौगात, उसको निकालना, उसको स्पर्श करना और फिर उसी स्मृति में स्थित हो जाना, याद करना उस क्षण को, उस पल को जब वो दी गई थी, तो मूड ठीक हो जाएगा। पहला। दूसरा ब्लेसिंग कार्ड, सब में रखे जो आज तक मिले ब्लेसिंग कार्ड की, कोई इधर कोई उधर, कोई गद्दी के नीचे तो कोई एक अलमारी में, एक पता नहीं कहां गया। ब्लेसिंग कार्ड्स जितने मिलते हैं सबको प्रिजर्व करके रखना है और आगे के लिए बता रहे हैं। इसके बाद जो भी ब्लेसिंग कार्ड मिलेगा, जिसके द्वारा मिलेगा, उस ब्लेसिंग कार्ड को तुरंत पढ़ लेना और वो उसमें जो वरदान दिया है, उस वरदान को, उस स्थान को और उस व्यक्ति को, चाहे दादी या जो भी है, उन तीनों को जोड़ देना, मेमोरी एसोसिएशन कर देना तीनों का। जैसे कि हमको ब्लेसिंग कार्ड मिला ये, यदि कोई आप अपमान करता है तो उस पर फूलों की, खुशियों की और शुभकामनाओं की वर्षा करो, ठीक है। ये ब्लेसिंग कार्ड हमको मिला दादी के हाथ से ओम शांति भवन में। अभी हमने लिया और लेते ही क्या करेंगे, फूलों की, खुशियों की और शुभकामनाओं की वही इमेजिन करना चालू कर देना कि फूलों की, खुशियों की और शुभकामनाओं की वर्षा मुझ पर हो रही है, दादी मुझे कार्ड दे रही है, संसार के लोग अपमान कर रहे हैं। एक सीन क्रिएट किया और जब सीन क्रिएट हो जाता है और उसमें हम रंग भर देते, कलर, पिक्चर, विजुअलाइजेशन, कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन, ये सब कुछ कर देते हैं, उसको लाइव बना दो, 3D, म्यूजिक बैकग्राउंड थोड़ा डाल दो, जो म्यूजिक उस समय बज रहा था जब कार्ड ले रहे थे उस पर भी ध्यान रखो, उस म्यूजिक को, उस गीत को, उस कार्ड को, लिखे हुए स्लोगन को, दादी को और स्थान को, सबको एक कर दो और ये जो एक क्रिएट हो गया ना, एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। ये आगे के लिए बता रहे, पिछला जो हुआ तो हुआ, वो कितना किया पता नहीं, तो आगे के लिए ये सारी चीजें जब जोड़ दी, अब एक साल के बाद, ठीक है, अचानक वो कार्ड हमको दिख गया, एक साल के बाद अचानक वो कार्ड दिखा, जब कोई आपका अपमान करता है तो एकदम दृश्य क्रिएट होगा, खुशियों की, फूलों की और शुभकामनाओं की वर्षा हो रही है, हम कार्ड ले रहे हैं, दादी हमें दे रही है, ओम शांति के भवन के बाहर कोई गालियां दे रहा है, क्योंकि हमने विजन क्रिएट किया था, दिस इज नोन एज विजुअलाइजेशन, एक विजन को हमने क्रिएट किया था। ये हो गया। तो ये क्या हो गया सेकंड पॉइंट, किसकी बात कर रहे थे हम, स्पर्श। सेकंड, थर्ड, हमने दादी से हाथ मिलाया था। हाँ ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है,
तो बहुत हाथ मिलाते थे।
हाँ फिर ये सबसे अच्छा है, हमने हाथ मिलाया था और जिन्होंने नहीं मिलाया उनको तो हमने जब हाथ मिलाया था उस स्पर्श को याद करना। स्पर्श को जो है ना, स्पर्श में संवेदनाएं होती है बहुत सारी, इसमें बहुत सारे नर्व एंडिंग होती है और उसमें मेमोरीज होती है। इसका निगेटिव एस्पेक्ट भी है तो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। विकारों में क्यों जाते हैं लोग, अल्पकाल का सुख है। अगर वो अल्पकाल का सुख उस स्पर्श में है तो ये बेहद का सुख इस स्पर्श में, इस सुख के सामने वो सुख गौन है, मिट्टी के समान है, ये विराट है, वो तो क्षणिक है और वो सुख दुख देने वाला है विकारों का। वो काम विकार के जो सुख है सारे दुख देने वाले हैं, आदि मध्य और अंत तीनों ही समय दुख मिलता है उससे। ये जो सुख है ये एक अलौकिक स्पर्श का सुख है। इस सुख में इस वो जो स्पर्श है संसार का, वो जो स्पर्श है उससे दुख उत्पन्न होता है, ये जो स्पर्श है इससे अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न होता है। ये अंतर है उस और इस स्पर्श में। तो वो क्षण को याद करना, चलो वो हो गया। तीसरा, चौथा,
बाबा से भी हाथ मिलाना,
बाबा से स्पर्श करना। उसमें सूक्ष्म वतन में हम बाबा से हाथ मिला रहे हैं और ये देखना है कि उसमें से क्या आ रहा है, सारी शक्ति आ रही है। सुनीता बहन, हाथ मिलाया और क्या हुआ, सारी शक्तियां हम में आ रही है और जो चीज हम में, जिस चीज की कमी है वो चीज उन हाथों से ट्रांसफर हो रही है। रोज सुबह हाथ मिलाया और सारी शक्तियां हमने ले ली। तो चौथा ये, और एक सबसे पहले तो परम धाम में शिव बाबा को टच करके आना, वो भी एक स्पर्श है। परम धाम में आत्मा बनकर जाना, टच किया और नीचे, यहां आना, देह में आना और देह से बाहर जाना, देह में आना और देह से बाहर जाना, यही सबसे बड़ा अभ्यास है। इस देह से जो तदात्म्य है वो कम से कम हो, यही तो अंतिम समय का अभ्यास कौन सा है, शरीरीपन। देह में आना और देह से बाहर जाना, ये अभ्यास बार बार हो, तो वो एक स्पर्श। और एक स्पर्श है वो कौन सा, गाय का स्पर्श। अच्छा, प्राणियों का, चलो ये भी एक है। फोटो में क्या हाथ लगाना, अच्छा, और बाबा का हो गया, परम धाम में करो या फोटो में करो या सूक्ष्म वतन में करो। तो वो हाँ नहीं, हाथ लगाना उसमें तो वो तो देखना हो गया, पढ़ना हो गया, पढ़ना ज्यादा है उसमें, हाथ भी है, चलो। और प्रकृति को कैसे, प्रकृति को भी, पांचों ही चीजों में प्रकृति आएगी। प्रकृति को भी स्पर्श करना, प्रकृति में भी स्पंदन है, प्रकृति में कुछ तो है जो निराकार है, उस निराकार को स्पर्श करना, वो भी एक अभ्यास है। बाबा के घर से टोली मिली थी, अच्छा, तो उसको क्या करना है, स्पर्श। टोली अभी जो रखी है फ्रिज में, निकाल कर स्पर्श करना ऐसे स्पर्श, एक स्पर्श और भी है, वो है, ये हमने भी कभी सोचा नहीं था आज तक, अभी अभी सोचा आते थे। हमारा जो फरिश्ता स्वरूप है वही हमें स्पर्श कर रहा है। हमारा जो अपना, बाबा ने कहा है ना, हरेक का फरिश्ता रूप एक सूक्ष्म वतन में है, तो हमारा अपना संपूर्ण स्वरूप है, एक ऐसा संपूर्ण स्वरूप जिसमें सारे दिव्य गुण है, जो सार संपूर्ण संपूर्ण रूप है, वो बाप समान जो रूप है और जो फरिश्ता रूप है, ऐसा फरिश्ता रूप सामने खड़ा है और हमारे सामने उसने हाथ दिए और हमने उस हाथों को पकड़ा, किसको पकड़ा, स्वयं को, उसको स्पर्श करना, तो भी क्या हो जाएगा, मूड थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो ये बात हो गई, तीसरा स्पर्श। अब चौथा, चौथा है टेस्ट, जब मूड डाउन हो जाए तो क्या करेंगे, कौन सी चीजों को टेस्ट करेंगे?
टोली खाने का दिल
तो सबसे पहले लेते हैं टोली। टोली दो प्रकार की, एक स्थूल एक सूक्ष्म, परंतु जब मूड डाउन होता है तब स्थूल ही ज्यादा चाहिए। सूक्ष्म तो इमेजिन करने के लिए थोड़ा मेहनत है, कैसे मैं इमेजिन करेंगे, वैसे ही तो मुश्किल है वो, वैसे ही योग कठिन लगता है और उसमें दुखी है, डाउन है, उदास है, और उसमें कहां से ऐसे होगा। तो एक तो स्थूल टोली, पहला टोली। दूसरा बोली, बोली भी एक फूड है। कौन सी बोली? मुरली। मुरली बोली है, भगवान की बोली। टोली बोली, तो भगवान के जो वाक्य है, हम बात कर रहे हैं खाने की, ठीक है। एक तो स्थूल आहार है और सूक्ष्म आहार है। इसके लिए पहले से हमारे पास कुछ पॉइंट्स लिखी हो पावरफुल, वो हो गया बोली, टोली बोली, और तीसरा है होली। यहाँ खाने की बात नहीं है, इसको हम सूक्ष्म रीति से लेंगे। बाबा ने हमेशा होली के लिए क्या कहा है, पास्ट इज पास्ट, होली जो हो गया। अब ये सोचना है जिस बात ने दुखी किया है वो बात बीत चुकी, अब वो वापस नहीं आएगी, इसके लिए फुल स्टॉप। टोली बोली होली और चौथा है गोली,
स्मृति का गोली,
स्मृति की गोली। मगर जब दुखी हो जाए तब स्मृति मुश्किल है, तो कौन सी गोली खाएंगे, और कौन सी गोली, वो भी राइट है।
आदत डालना चाहिए,
ऐसी आदत डालना चाहिए कि स्मृति स्वरूप हो जाए। एक तो वो, और एक जो सूरज भाई जी हमेशा कहते हैं, पानी जो है वो चार्ज कर दो, भोजन जो है वो चार्ज कर दो, वो भी एक गोली का काम करेगा। जैसे मेडिसिन होता है ना, डॉक्टर दवाई देता है तो उससे व्यक्ति ठीक होता है, तो वैसे जो पानी हम पिए उसको क्या कर देना है, चार्ज कर देना है। कैसे चार्ज करेंगे, अभिमंत्रित। पहले के ऋषि मुनि पानी लेते थे और कुछ मंत्र पढ़ देते और शाप दे देते थे किसी को, पत्थर बन जा या कुछ हो जा, या अच्छा भी दे देते थे कभी। तो कैसे अभिमंत्रित, उस जल को क्या कहते हैं, अभिमंत्रित जल। मंत्र है उसमें, मंत्र है क्या, शब्द। उनके संस्कृत थे, हम हिंदी बोले, भाषा से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, किसी भी शब्दों का प्रभाव है वस्तुओं पर। वो सोलोमन आइलैंड दिखाया है ना, सोलोमन आइलैंड में जब भी कोई झाड़ होता है, किसी ने अपने किताब में लिखा है, झाड़ जो होता है पुराना हो गया, अब उस झाड़ को तोड़ना है, गिराना है वहां से, तो सारे गांव वाले एकत्र हो जाते हैं झाड़ के आसपास, उस झाड़ को गालियां देते, सूख जा सूख जा सूख जा, एक मास तक। एक मास के बाद वो झाड़ स्वतः गिर के सूख जाता है, कट जाता है। दूसरे डॉक्टर इमोटो को किए हुए एक्सपेरिमेंट्स जापान में, पानी लिया, एक ग्लास पर लिखा लव, एक ग्लास पर लिखा हेट, रात भर रखा, दूसरे दिन अपने इंस्ट्रूमेंट से देखा तो जिसपे लव लिखा था उस पर बहुत सुंदर डिजाइन बन गई वो इंस्ट्रूमेंट से, जिसमें हेट लिखा था जिसमें खराब डिजाइन बन गई। संकल्पों का, शब्दों का पानी पर असर है, और हमारे संपूर्ण शरीर में पानी है। कौन से संकल्प हम कर रहे हैं, यदि हम कह रहे हैं मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो नहीं है तो भी बीमार होंगे, क्योंकि वो सारे संकल्प देह स्वीकार कर रहा है, और फिर संसार का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, फिर कोई भी ठीक नहीं है। पर बीमारी कहां है, शरीर में नहीं, मन में। क्यों? क्योंकि संकल्प वैसे। कोई कहता है मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। हमारे पास एक पेशेंट आता था, एक फैमिली जिसका एक बेटा का, छोटा सा बेटा, उसका डायलिसिस चालू था, और वो परिवार बहुत गरीब था, पर वो पिताजी हमेशा जो आते थे, इतनी कंप्लेंट्स, अभी ये एडमिट हुआ है, अभी वो बीमार हुआ है घर पे, कभी बेटी बीमार होती है, कभी वो बीमार हो रहा है, कभी वो बीमार, पैसे नहीं है, बार बार रोना, कंटिन्यूअस रोना, और जितना ज्यादा वो रोता था उतने ज्यादा लोग और बीमार पड़ते थे, उतने ज्यादा पैसे और कम आते थे। यह आकर्षण का नियम काम करता है। आकर्षण का नियम कहता है कि जैसे संकल्प हमारे मन में होंगे वैसे ही संकल्प इस संपूर्ण प्रकृति में है कहीं ना कहीं। हम जो संकल्प करेंगे प्रकृति खींचेगा उस तरह के सेम संकल्पों को। यदि मैं ये संकल्प करूं मैं रोगी हूं, मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, ये संकल्प मैं करूं तो संसार के जितने कमजोर संकल्प होंगे वो आकर्षण करेंगे और क्रिएट होगी परिस्थितियां। मैं बीमार हूं नहीं पर बोल रहा हूं तो बीमारी आएगी। हम आह्वान कर रहे आ जाओ, वो तो अपने घर में थी, हम गए और उसके दरवाजे पर खटखटाया कि आओ आओ आओ। हम दुखी है नहीं, हमने बुलाया है, चुना है, बहुत मेहनत की है, वो तो बहुत दूर था, उसको बुलाया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो वो दुख आया है। आह्वान किया, निमंत्रण दिया, पत्र लिखा, एसएमएस, व्हाट्सएप कि क्यों नहीं आ रहे हो, तब कहीं जाके वो तो नहीं आना चाहता था पर तुमने बुलाया करके आ रहे। जो संकल्प व्यक्ति करता है वो संकल्प प्रकृति में जा रहा है, प्रकृति और संकल्प का रिएक्शन और घटनाओं का निर्माण। जीवन में अभी दुख है हमारी रचना है, सुख है हमारी रचना है, आनंद है हमारी रचना है, रोग है हमारी ही रचना है, अस्वस्थ है, बेचैनी है, निराशा है, दुख जीवन में बहुत आत्मग्लानी का भाव है, सब कुछ हमारी रचना है, हमने निर्माण किया है अपने संकल्पों से। और ठीक कौन करेगा, हम ही ठीक कर सकते हैं। तो हम कहां थे, गोली पर। कौन सी गोली, जो भी हम खा रहे हैं उसको पॉजिटिव संकल्प से चार्ज कर देना, जो भी हम पी रहे हैं उसको पॉजिटिव संकल्प से चार्ज कर देना, उसमें वाइब्रेशंस भर देना समान के साथ कि ये जो पानी मैं पी रहा हूं इस पानी को पीते ही मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति जागृत होगी, ये पानी पीते ही मेरे अंदर जितनी बीमारियां हैं सब खत्म हो जाएगी। पेशेंट को थोड़ी पता रहता है दवाई में क्या है। हमारे पास आदिवासी लोग आते हैं बहुत सारे, उनको ये पता ही नहीं रहता है दवाई में क्या है, वो इतने पढ़े लिखे थोड़ी ना होते हैं कि इंटरनेट पे जाके खोजेंगे ये उसका साइड इफेक्ट है, कुछ भी पता नहीं उनको, उनको जो भी दे दो वो खा लेते और ठीक हो जाते। क्यों, विश्वास, लॉ ऑफ फेथ। तो यहां लॉ ऑफ फेथ काम करता है, दवाइयों से ज्यादा लॉ ऑफ फेथ ही काम करता है। सारी दुनिया भर के इलाज से लोग ठीक नहीं होते और झाड़ फूक वाले से जाके ठीक हो जाते हैं, मंत्र फूक करते हैं ना उससे ठीक हो जाते हैं। क्यों, विश्वास। यदि उसी विश्वास से इस पानी को पिया जाए कि ये पानी पीते ही मेरा ये संस्कार, मेरी ये आदत, मेरा ये विकार, ये कमजोरी या शारीरिक रोग, शरीर में कहीं दर्द है, इस संकल्प से उसको पीना तो वो काम करेगा। ये तो हो गया पानी, और उसी तरह भोजन भी, वो सबके लिए लागू होगा, चाहे भोजन चाहे पानी या कुछ भी, चाहे अमृत लेते हो गुरुवार का यहां पर, कोई भी, ठीक है। तो गोली, और लास्ट है झोली। झोली में हमारे पास क्या चाहिए, पावरफुल पॉइंट्स भरी हुई चाहिए, वरदानों का, और ऐसी मुरलियों से कलेक्ट की हुई पॉइंट्स चाहिए हमारे पास जो इमरजेंसी में काम आए। इमरजेंसी में इंजेक्शन देना पड़े तो, इमरजेंसी में गोली थोड़ी काम करती, इंजेक्शन चाहिए। तो हमारे पास कुछ महावाक्यों के इंजेक्शन चाहिए, जब अचानक उदास हो जाओ, डिप्रेस हो जाओ, दुखी हो जाओ, निराश हो जाओ, तो ऐसे कुछ महावाक्य चाहिए कि जिनको पढ़ते ही नवचेतना जागृत हो, संचार हो शक्ति का विधेय, ऐसे पॉइंट्स बुद्धि में, और उसमें ड्रामा की पॉइंट्स, ड्रामा की सारी पॉइंट्स, और 24 घंटे में एक बार ड्रामा की सारी पॉइंट्स एक बार रिवाइज करनी है हर एक को, वंस इन 24 आवर्स। कौन कौन सी, सबको पता है 15-20 पॉइंट है। ड्रामा कैसा है, एक एक चालू करो। ड्रामा कल्याणकारी है, और फटाफट बोलते जाओ,
सूक्ष्म
नहीं, ड्रामा की पॉइंट्स जो मुरलियों में रोज आती है, ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। तीसरा हो गए हैं ड्रामा, ड्रामा जो हो रहा है, जो हुआ वो अच्छा और जो हो रहा है उससे अच्छा और जो होगा वो सबसे अच्छा, पर हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि हम अपनी संकुचित दृष्टि से देख रहे हैं, ट्यूबुलर विजन। और
जो बीत गया वो ड्रामा में नूंद हो गया,
जो ड्रामा में नूंद हो गया अब उसे बदला नहीं जा सकता है और ये ड्रामा रिपीट हो रहा है और रिपीट ये अभी सीधा 5000 साल के बाद होगा, अभी नहीं होगा तुरंत, अभी होता तो दुखी होते, पर टाइम है उसको इसके लिए निश्चिंत। और ड्रामा भगवान को मुरली के सबसे प्रसिद्ध महावाक्य, ये ड्रामा बाप को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद होना चाहिए। ड्रामा की हर सीन उसे पसंद है, हर एक्टर उसे पसंद है, हर एक्टर की हर एक्शन उसे पसंद है, तो तुम्हें भी ड्रामा पसंद होना चाहिए, एक्टर पसंद होना चाहिए, एक्शंस पसंद होनी चाहिए। ये ड्रामा में हर एक्टर कैसा है? हीरो हीरोइन है, वो तो हम है, केवल निर्दोष नहीं संपूर्ण निर्दोष। रवि भाई इस ड्रामा में हर एक्टर कैसा है? संपूर्ण निर्दोष, सारे झगड़े खत्म। इस ड्रामा में किसी का कोई भी दोष नहीं है, हमारे जीवन में जो कुछ हुआ ऐसा ही होना चाहिए था, नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, स्पीच में कहा है, जो भी तुमको घाव मिले है ना, जो भी आघात हुए है, नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड, तुमको तुम ही पात्र थे उसके लिए, या तुम उसी के लायक थे, खराब शब्दों में बोलो तो जरूरी था तुमको ये जो हुआ, जीवन में आघात मिला, दुख मिला, धोखा मिला, होना ही चाहिए था। तो इस ड्रामा में हर एक्टर निर्दोष है, इस ड्रामा में हर एक्टर का पार्ट फिक्स्ड है, इस ड्रामा का हर एक्टर अलग अलग है, हर एक्टर की अपनी अपनी विशेषताएं, हर एक्टर की अपनी अपनी बीमारी, हर एक्टर का अपना अपना पास्ट है, हर एक्टर की अपनी अपनी कमजोरी है, हर एक्टर की अपनी अपनी प्रारब्ध है, हर एक्टर का अपना अपना भाग्य है, अपनी अपनी भविष्य है। हर इस ड्रामा में जो भी नया एक्टर आ रहा है वो अपना भाग्य लेके आ रहा है, जैसे किसी घर में छोटे बच्चे का जन्म हुआ, माँ बाप चाहते हैं कि ये ज्ञान में चले, इसको बीके बनाना है, और वो कुछ दूसरे ही लक्षण दिखाता है संसार के, उसको बिल्कुल पसंद भी नहीं है, सुनना भी पसंद नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, वो अपना भाग्य लेके आया, वो उसका जो भाग्य वहां वो जाएगा, जबरदस्ती थोड़ी ना पकड़ के किसी को लाया जा सकता है। तो हर एक्टर का पार्ट फिक्स है, भाग्य फिक्स है। ये ड्रामा विविधतापूर्ण है, बहुत वैरायटी है इस ड्रामा में, ये ड्रामा कल्याण न्यायकारी है, इस ड्रामा में किसी के साथ भी अकल्याण नहीं हो रहा है, और ये ड्रामा सत्य है, और ड्रामा में जो हो रहा है वही होना चाहिए, जो हो रहा है ना वही होना चाहिए, और जो हुआ वही होना चाहिए था, चाहे कैसा भी हो, हमको लगता है ये अच्छा नहीं है, ये बाकी 10 साल में ये 3 सीन ठीक नहीं है, बाकी सब तो ठीक है, पर शायद वही सत्य है, तो ये ड्रामा सत्य है, ये ड्रामा अनुभवी बना रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स, ये विश्वविद्यालय ठोकरों की, जहां पे तुम शक्तिशाली होके निकलते हो, क्लास आगे बढ़ रही है, क्या कराना है, इमर्ज क्या करा, क्या इमर्ज कराना, हाँ मतलब रिपीट हो रहा है, हूबहू रिपीट हो रहा है, ड्रामा टिकलू टिकलू, ड्रामा टिक टिक चलती रहती है ड्रामा की, ये ड्रामा अदली बदली नहीं हो सकता है, अदली बदली नहीं हो सकती है, जो है वैसा ही है। इस ड्रामा में भगवान का भी पार्ट फिक्स है, बाप भी इस ड्रामा में बंधा हुआ है, बाप भी इस ड्रामा को बदल नहीं सकता। और लास्ट पॉइंट है, ये ड्रामा माँ है, ठीक है, इस ये बना बनाया, इसको किसी ने बनाया नहीं, ये नहीं पूछा जाता किसने बनाया है, ये बना बना इटरनल है, आदि मध्य अंत नहीं है इस ड्रामा का, ये है ही। और सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है लास्ट, वो अलग पॉइंट है, वो ड्रामा से रिलेटेड, वो पुरुषार्थ से रिलेटेड पॉइंट है, ये ड्रामा की विशेषता हम गिना रहे, ड्रामा कैसा है, इस ड्रामा में कुछ राज राज ही रहेंगे, और यही इस ड्रामा की शोभा है। ये एक लास्ट पॉइंट है। ये ड्रामा में कुछ राज जो है, कुछ सीक्रेट लास्ट तक सीक्रेट ही रहेंगे, और उनका सीक्रेट रहना ही बहुत सारे एडवांस पार्टी के रहस्य, देवताओं का जन्म कैसे होगा, देवताओं के मां बाप देवताओं को कैसे जन्म देंगे, फर्स्ट जनरेशन, विनाश किस तरह एग्जैक्ट होगा, कुछ राज जो है एकदम लास्ट में ही खुलेंगे, और शायद न भी खुले कुछ कुछ। और यही इस ड्रामा की ब्यूटी है, सौंदर्य है, शोभा है। तो ये भी एक पॉइंट है। तो हम कहां थे, झोली, अपनी झोली में ड्रामा की सारी पॉइंट भरी हुई चाहिए, ये था टेस्ट। अभी रह गया है नाक, गंध, सूंघना। तो जब मूड डाउन हो जाए तो किस चीज की स्मेल लेना है, ये कठिन है थोड़ा, ये सबसे सूक्ष्म है। बाकी सब तो ठीक है, आंखों से देख लिया, सुन लिया, स्पर्श कर लिया, टेस्ट कर लिया, सूंघना किसको है जब मूड डाउन हो जाए तो। मूड फॉर मूड का टॉपिक चल रहा है, बाबा के रूम की अगरबत्ती की खुशबू, हाँ ये एक है। क्योंकि जैसे संगीत की कहानी बताई हो, उसी तरह सुगंध में भी उस स्थान से जुड़ जाता है। यदि हम किस दिन आए और बाबा के कमरे में बैठे, मेडिटेशन कर रहे, योग कर रहे, और किसी ने वहां पे एक अजीब सी अगरबत्ती लगा दी, और वो लगते ही हमारा एकदम से अशरीरी हो गए, तो वो सुगंध, वो म्यूजिक और हमारी स्थिति जुड़ गए। इसके बाद कभी भी, या तो किसी ने यह भी अनुभव किया होगा, शायद पहले जब भक्ति की थी और भक्ति मार्ग में किसी मंदिर में जाते थे, और किसी मंदिर में वहां जो जाते थे और वहां जो अगरबत्ती लगती थी उसमें कुछ अनुभव हो गया था, वही अगर अभी लगा दिए ना और उसकी सुगंध आ गई तो वही अनुभव फिर हो जाएगा भक्ति का। तो सुगंध कौन सी, अगरबत्ती। दूसरी सुगंध,
फूलों का सुगंध,
फूलों की सुगंध, उससे भी मूड थोड़ा सा ठीक होता है। जैस्मीन, वो तो स्टडीज भी हुई है इसके ऊपर, साइंटिफिक स्टडीज हुई है, कौन कौन सी सुगंध ले तो मूड ठीक होता है। ये संसार के लोगों ने की है स्टडी, ब्रह्मा कुमारी से कोई लेना देना नहीं, बाहर के लोगों ने स्टडी की है, साइंटिस्ट ने, कि ये लिस्ट है, इन सबकी सुगंध लो तो मूड ठीक। तो एक तो वो, और
पवित्रता का सुगंध,
ब्रह्मा भोजन की सुगंध, ये भी अच्छा है। अभी नहीं है, उसको याद करना। अच्छा, कठिन काम है। कौन सी सुगंध? अच्छा, अज्ञात, अननोन सुगंध, तब आती थी। चलो, और एक है प्यूरिटी की फ्रेग्रेंस। जैसे ही, जैसे अभी यहां हम बैठे हैं, यहां एक सुगंध है इस वातावरण में। अभी यहां से सीधा चले जाओ मार्केट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, बस डेपो, वहां पे अजीब से वाइब्रेशंस भी अलग है, वहां की सुगंध ही अलग है। मार्केट
विकारों का बदलाव,
वो बहुत सूक्ष्म है ये विकारों की। यहां जो सुगंध है, यहां एक अलौकिक सी सुगंध है, इस वातावरण में दिव्यता है, एक पवित्रता की सुगंध है यहां पर। और यहां आते ही हरेक को अपने अंदर जो अनादि सुगंध है उसकी स्मृति आती है, इसके लिए वो थोड़ा शांत हो जाता है थोड़े समय के लिए, क्योंकि ये सुगंध उसको अपने ही अंदर की सुगंध का आभास कराती है। तो ये एक सुगंध, और पॉजिटिव संकल्प की फ्रेग्रेंस। चलो, पॉजिटिविटी की फ्रेग्रेंस, एक है पॉजिटिव फ्रेग्रेंस ऑफ पॉजिटिविटी, फ्रेग्रेंस ऑफ प्यूरिटी, एक है फ्रेग्रेंस ऑफ वर्च्यूज, गुण, गुणों की भी सुगंध है। ये सारी जो सुगंध है ना, इनको पकड़ने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। संसार के लोग और व्यक्ति जो संसार में डूबे हैं और विकारों में डूबे हुए, उनको इतना नहीं समझ में आएगा। ये तो जैसे अध्यात्म के मार्ग में पुरुषार्थी आगे आगे बढ़ते जाता है, उसको पता चल जाता है। कि एक भाई ने हमको अनुभव सुनाया था, शांतिवन के एक भाई ने, जो 20 साल से घर गया ही नहीं था, ठीक है, 20 साल में फिर पहली बार घर गया 7 दिन के लिए। वो भी घर पे नहीं रुका, सेंटर पर रुका, और वो 7 दिन उसने केवल सेवा की, एक सेंटर से दूसरे सेंटर, दूसरे सेंटर से तीसरे सेंटर, यहाँ क्लास, वहां क्लास, वहां क्लास, यहाँ क्लास, और करके वापस आए। तो उसने अनुभव सुनाया कि मेरी जाने से पहले जो स्थिति थी ना, अब वो नीचे हो गई है थोड़ी सी। कितना सूक्ष्म उसने ये किया कि यहां का जो वायुमंडल है, यहां से भी ब्रह्मचर्य का वातावरण, पवित्रता का वातावरण, श्रेष्ठ जीवन का वातावरण, धारणाओं का वातावरण, मर्यादाओं का वातावरण, इस वातावरण से उस वातावरण में जाते हैं। संसार का वातावरण है, विकार का वातावरण है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वायलेंस, सब कुछ है वहां पर, हिंसा है। भले सब कुछ उसने ठीक ही किया, परंतु वो अपनी सूक्ष्म चेकिंग करके उसने ये जाना कि मेरी स्थिति जाने से पहले इधर थी तो अभी यहां है। भले उसने सब कुछ सेवा ही की, फिर भी तो एक सुगंध जो होती है वो इस वातावरण में है, वो है पवित्रता की, वर्च्यूज की, पॉजिटिविटी की, रूहानियत की, डिविनिटी की। तो ये भी क्या है? सुगंध है। हाँ, फिर है एक मिट्टी, कितनी सुंदर मिट्टी से खुशबू आती है, वो जो सौरभ जो सुगंध उठती है मिट्टी से, वो भी बहुत आह्लादित करती है। इसके लिए पांचों ही बातों में प्रकृति है, देखने में, सुनने में, खाने में प्रकृति बोला हमने, ब्रह्म प्रकृति, प्रकृति तो लगभग सभी इसमें प्रकृति आती है। और प्रकृति ऐसी चीज है कि व्यक्ति प्रकृति से दूर गया इसके लिए बीमार है, उदास है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है। क्रिएटिविटी जितनी पहले थी अब नहीं है, रचनात्मकता। पहले में कवि सारे जो होते हैं प्रकृति की गोद में जाते हैं, कवि, चित्रकार, मूर्तिकार, ये जितने लेखक, ये सब प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं और वहां पर कुछ ना कुछ नवीन रचना करते। आज व्यक्ति ऑफिस में, कार में, घर में, टीवी, इसमें कैद है, इससे बाहर जाता ही नहीं हो, टेरेस पे जाने के लिए भी टाइम नहीं है उसके पास, गार्डन कभी कभी, महीने में एक बार, वो भी भीड़, एक भीड़ से बचने जाता है, संडे में जाता है, संडे, जहां पे संडे सारे ही लोग आते हैं, वो जाता किस लिए? ताकि भीड़ से एकांत में जाए। पर उस दिन सारे ही वहां आ रहे, तो वहां पर भी भीड़ जमा हो गई है, तो उसको एकांत कहीं है ही नहीं। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, जब मूड डाउन हो जाए, दुखी हो जाए, तो क्या क्या करना चाहिए? तो क्या चाहिए? फूड चाहिए। सबसे पहला फूड आंखों का, आंखों की पांच बातें कौन कौन सी, क्या देखना है आंखों से? मधुबन, बाबा मिलन, परमधाम, सूक्ष्म वतन, सतयुग और दादियों के साथ बिताए हुए पल, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में बिताए हुए पल, या फिर किसी क्लास में हम बैठे थे वो भी पल, जैसे अभी यहां बैठे हैं ना, ये भी एक मेमोरी है कि जहां पे हम कुछ सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, ये भी एक मेमोरी है। और प्रकृति का सौंदर्य, और टोली लिया, सौगात ले रहे हैं, टोली ले रहे हैं, घूम रहे, फिर रहे, दादी हमारे घर पे आई है, लक्ष्मण भाई, ठीक है ना, वो सारे पल जो है वो तो कैमरा में कैद है, परंतु ये जो है ना बुद्धि रूपी कैमरा को थोड़ा खोलना है और उसमें देखना है। सेवा के पल, ब्राह्मण परिवार के पल, के साथ बिताए हुए पल, सेवाओं में बिताए हुए पल, किसी की मदद की है हमने, असहाय था और बहुत मदद कर दी, उस समय हमें खुशी हुई, उस पल को याद करना। तो ये सब देखना है, पहला था देखना, दूसरा सुनना, क्या क्या सुनेंगे? मुरली, गीत, तीसरा क्लास, चौथा बाबा के महावाक्य, पांचवा प्रकृति, प्रकृति की आवाज है, प्रकृति के गीत, प्रकृति का संगीत, चिड़ियों के गीत, सब कुछ। फिर है स्पर्श, क्या क्या स्पर्श करेंगे? सौगात, ब्लेसिंग कार्ड, फरिश्ता, अपना स्वरूप, शिव बाबा, हाथ, दादी ने हाथ मिलाया था, वो बाबा ने हाथ पकड़ा था या पकड़ रहे हैं परम धाम में सूक्ष्म वतन में और भी कर सकते सतयुग में रास कर रहे हाथ मिला के सतयुग का इमेजिनेशन कौन सा ट्रैफिक हाँ मैं पता वो हमारे हाथ में है फिर उसके बाद में चौथा ये हो गया स्पर्श उसके बाद कानों द्वारा क्या क्या अरे कानों का हो गया ना सुनने का तो ये सारा था अभी स्पर्श का हो गया टेस्ट में क्या क्या टोली बोली गोली होली और झोली ये चार पांच चीजें और लास्ट में था सुगंध कौन कौन सी मिट्टी की प्रकृति की बाबा के रूम की अगरबत्ती की अच्छे वाइब्रेशंस की क्लास की मधुबन की पवित्रता की वर्च्यूज की पॉजिटिविटी की जड़ी बूटी होगी अच्छा ठीक है अच्छा ओम शांति।